ओम शांति। दो तीन दिन से सुन रहे लगातार, थके तो नहीं ना? आज एक दिन है, कल तो फिर जाने का दिन है, राइट? और आपको तो आदत है एजुकेशन सुनने की, सुनाने की। सुनाना कम लेकिन सुनना ज्यादा हो रहा है, राइट? तो अभी का सेशन है पिलर्स ऑफ एजुकेशन। इंसान को रोटी कपड़ा मकान, इसके बाद सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन, राइट? इतना महत्वपूर्ण है एजुकेशन। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ज्ञान मिलता है, वो एक उस व्यक्तित्व को वो शेप कर सकते हैं और उसके सोच को वो परिवर्तन कर सकता है एजुकेशन के द्वारा। तो एजुकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हर एक इंसान का। लेकिन एजुकेशन की परिभाषा क्या है हम सभी जानते हैं, लेकिन किस ओर जा रहा है एजुकेशन वो भी हम सबको सब जानते हैं। इसमें दो अक्षर है, लिटरेट एंड एजुकेटेड। हम लिटरेट होते जा रहे हैं या एजुकेटेड होते जा रहे हैं? लिटरेट होते जा रहे हैं, अक्षर पढ़ना वो सब लिखना ये सब समझते जा रहे हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन कितना हम कर रहे हैं हमको ही पता है। तो वो एजुकेशन सही मायने में क्या है और किस रीति से हम उसको अपने जीवन में धारण करना है वो हम इस सेशन में देखते हैं। हम इस सेशन में हम एक अलग दृष्टिकोण से इसको देखेंगे, पढ़ाने के हिसाब से नहीं लेकिन खुद के जीवन में के हिसाब से, खुद के लाइफ में ये सब चीजें कहां तक है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ये सब है तो फिर हम दूसरों को दे सकते हैं। तो इसीलिए पढ़ाने के हिसाब से नहीं लेकिन देने के हिसाब से नहीं, दूसरों के लिए नहीं लेकिन अभी जो सेशन होगा वो खुद के लिए हम एनालाइज करेंगे, खुद के लिए लागू करने के लिए की कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी को पता है डॉलर्स रिपोर्ट जो यूएन डॉलर्स कमीशन था वो 1996 में ऑन एजुकेशन दे हैड आइडेंटिफाइड फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन, राइट? तो फर्स्ट पिलर ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू नो, समझने के लिए सीखना। और सेकंड पिलर ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू डू, करने के लिए सीखना। एंड थर्ड पिलर ऑफ एजुकेशन इज लर्निंग टू बी उस स्थिति में स्थित होने के लिए सीखना। और चौथा पिलर है लर्निंग टू लिव टुगेदर, एक साथ जीने के लिए सीखना। अभी वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम है इन चार पिलर्स में से कितने पिलर्स को कवर करता है? फर्स्ट टू, राइट? और दो और पिलर्स जो है उसको कवर करता नहीं है। तो जब एक टेबल के चारों पहिए अगर ये ठीक है, चारों ही ये लेग्स ठीक है, तभी वो स्टेबल रह सकता है। जिंदगी में भी ये चारों ही पिलर्स बराबर चाहिए। केवल दो पिलर्स मजबूत होते जा रहे हैं वो भी पूर्णतः नहीं, वो भी आधा अधूरा। और दो पिलर्स जो है उसके बारे में हमें पता ही नहीं है। और चलो लर्निंग टू लिव टुगेदर थोड़ा बहुत देखा देखी में हम सीख जाते हैं, लेकिन द थर्ड पिलर लर्निंग टू बी ये मोस्ट अफेक्टेड पिलर है, क्योंकि हम वी हैव आइडेंटिफाइड आवर सेल्व्स वेरी वेरी रॉन्गली। हम ह्यूमन बीइंग्स है या ह्यूमन डूइंग्स है? ह्यूमन बीइंग है लेकिन अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ह्यूमन डूइंग, हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, उसके साथ अपने आपको आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन हम क्या है ओरिजिनली, तो उसके साथ हम आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। तो इसीलिए हम हर एक पिलर को एक अलग दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पिलर है, सबसे पहला जो पॉइंट है, लर्निंग टू नो, जानने के लिए सीखना। जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, चाहे वो किताबों के द्वारा, चाहे वो टीवी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, जो भी हमें मिल रहा है वो क्या है, नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है? क्या कहेंगे? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन है ना? जो भी हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, साइंस है, जो भी एरियाज है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है? क्या कहेंगे? नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है? मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, जो भी है, फिलॉसफी है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन है? बोथ द थिंग्स। किसी ने जो समझा है या फिर एनालाइज किया है उसको हम पढ़ा रहे। जीरो, जो भी हम जो बेसिक लेवल में हम सीखते हैं, ABCD आई, वो इंफॉर्मेशन। लेकिन लेटर लेवल में भी जो भी हम सीखते हैं, कॉलेज लेवल में या फिर PhD लेवल में जो भी हम सीख रहे हैं, ले रहे हैं, वो हमें एनालाइज करने की जरूरत है, ये इंफॉर्मेशन है या फिर नॉलेज है। ये एनालाइज करने के लिए हमें डिफरेंस पता होना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज? कोई बता सकता है? क्या है? अलग अलग अक्षर है तो अलग अलग मीनिंग होना चाहिए, राइट? तो इंफॉर्मेशन क्या है और नॉलेज क्या है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? नहीं सुनने में आ रहा है मुझे, मुझे सुनने में नहीं आया। इंफॉर्मेशंस आर चेंजिंग एंड नॉलेज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन विच इज नॉलेज इज अ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन। Which are fundamental, universal. Okay. Story plus practical is knowledge. Theory. Theory plus practical is knowledge. Information is just theory. And what is wisdom? Information, knowledge, wisdom. Right. ओके, बहुत अलग अलग डेफिनेशंस मिल रहे हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इन अ वेरी सिंपल वे। शायद वो साइंस के हिसाब से, यानी लेकिन जीवन के हिसाब से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, क्रोध नहीं करना चाहिए, राइट? किसी ने, बुजुर्ग ने बोल दिया या फिर किसी ने, महात्मा ने बोल दिया आपको कि क्रोध नहीं करना चाहिए। इट इज अ वन लाइन इंफॉर्मेशन, राइट? इट इज, कैन दैट बी नॉलेज? वो ज्ञान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्या मिसिंग है वो ज्ञान में परिवर्तन होने के लिए? वाई दैट कांट बी कॉल्ड एज नॉलेज? एक्सपीरियंस एंड एक्सटेंशन नहीं है, एक्शन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। ओके, वो तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें कैसे बोलेंगे आप? व्हाट, हाउ कैन दिस बी कॉल्ड एज नॉलेज? नॉलेज के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? समझ, राइट? अंडरस्टैंडिंग। व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्यों क्रोध करना को नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि क्या होगा, क्रोध न करने से लाभ क्या होगा, ये पूरा अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग इज इक्वल टू नॉलेज। अगर उस इंफॉर्मेशन में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, तो क्या होगा वो, उसमें बल नहीं है, उसमें एनर्जी नहीं है, राइट तो वो ब्लाइंड फेथ माना जाएगा। केवल इंफॉर्मेशन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो ब्लाइंड फेथ माना जाएगा, वो नॉलेज नहीं माना जाएगा। तो वो डेप्थ, वो अंडरस्टैंडिंग, समझ होना जरूरी है। तो ज्ञान में ताकत है, ज्ञान रोशनी है, ज्ञान के आधार से एनलाइटनमेंट है, एम्पावरमेंट है। सशक्त हम ज्ञान से बनते हैं, सशक्त इंफॉर्मेशन से नहीं बनते, खोखलापन है इंफॉर्मेशन। तो वो ज्ञान पाना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग, द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच नेसेसरी। सो उस ज्ञान को हम विजडम में कैसे परिवर्तन करेंगे, प्रज्ञा जिसको हम कहते हैं, वो इंप्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। जब समझ है, थियोरी है, नॉलेज इज थियर इनफ, समझ है क्यों क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, करने से हानि क्या होगा, ये सब अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए उसमें विजडम नहीं बन रहा है, वो ताकत, उससे भी इन डेप्थ जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो इसीलिए वो क्या मिसिंग है, इंप्लीमेंटेशन। नॉलेज प्लस इंप्लीमेंटेशन इज इक्वल टू विजडम। वो इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता, हम सबको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, जिंदगी में सब कुछ पता है, पता होते हुए भी हम कर क्यों नहीं पाते हैं, कर क्यों नहीं पाते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत सारा लंबा लिस्ट है, टू डू एंड नॉट टू डू, ये सब पता है हमको, लेकिन फिर भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा में वो शक्ति की कमी है, इसीलिए हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। आत्मा में वो शक्ति जब आती है, जब हम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अनुभव होता है, राइट जब अनुभव होता है तो फिर वो विजडम बन जाता है। इसीलिए कहते हैं घरों में बड़े बुजुर्गों का रहना बहुत जरूरी है। क्यों कहते हैं, यंगस्टर्स में भले ज्ञान है, एनर्जी है, इनोवेशन है, क्रिएटिविटी है, लेकिन बुजुर्गों में जो है वो कौन सी चीज है जो यंगस्टर्स में नहीं है, वो है अनुभव, विजडम। और ये जरूरी नहीं है सभी बुजुर्ग वाइज हो, सभी यंगस्टर्स वाइज न हो, ऐसे भी नहीं हो सकता। जितना इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होता जाएगा लाइफ के बारे में, वो यंग एज में ही हम वाइज बन सकते हैं, हमारे अंदर वो विजडम आ सकता है। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर हम चलना जब शुरू करते हैं, ये चेंज, पहला चेंज क्या आता है अपने जिंदगी में, जिंदगी को हम अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, इन डेप्थ गहराई से देखना शुरू करते हैं, अपना दृष्टिकोण ही बदल जाता है जिंदगी के बारे में, तो फिर उसके समझ भी बदलता जाता है, तो फिर स्पिरिचुअल विजडम जिसके अंदर है वो फिर उसके जीवन में वो स्थिरता, वो जो स्थायी, वो बैलेंस जब आता है, तो फिर जिंदगी एक प्रकार से स्मूथ चल सकता है। सो व्हाट डू वी हैव टू नो इज द विजडम, स्पिरिचुअल विजडम। जितना इन डेप्थ वो अंडरस्टैंडिंग, वो समझ हमारा बढ़ता जाएगा, हमारे अंदर वो विजडम बढ़ता जाएगा, वो जरूरी है अभी अपने लिए, राइट तो वो हमें इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, वो समझ पाने की अपने जिंदगी में जरूरत है। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग टू नो, राइट और नेक्स्ट जो पिलर है, सेकंड पिलर है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज लर्निंग टू डू। जिंदगी में अलग अलग चीजें हम करते हैं, छोटी चीजें, मोटी चीजें, बहुत अलग अलग वैरायटी के स्किल्स है। और इसलिए कहते हैं इस संसार में इतना इंटेलिजेंस है, एक छोटे से चिड़िया में, चिड़िया के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो इंसान के अंदर नहीं है। छोटे सांप के अंदर जो इंटेलिजेंस है दूसरे व्यक्ति के अंदर। मैं कभी भी ये घमंड नहीं कर सकती हूँ मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वो छोटे से जो गाय कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती, राइट? तो इतना सारा इंटेलिजेंस, बहुत कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन यहां समझने की जरूरत है क्या है, क्योंकि अलग अलग स्किल्स को, स्किल तो आता है, पेंटिंग आता है, पॉटरी आता है, पोइट्री आता है, फिर पढ़ाना, बहुत कुछ स्किल्स है संसार में, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमें अभी समझने की जरूरत है, विथ विच इंटेंशन आर वी डूइंग आर कर्मा। जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे का एटीट्यूड क्या है, वो हमें बदलने की जरूरत है, जरूरत है। आपने ये कहानी सुनी होगी ना, एक बहुत सुंदर मंदिर बन रहा था, वहां बहुत सारे कारीगर काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ रहे थे। एक ऐसे टूरिस्ट आया, फॉरिनर, वो क्यूरियस था ये क्या कर क्या रहे हैं। तो एक व्यक्ति, एक कारीगर के पास गया, एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के पास गया और पूछा, भाई आप कर क्या रहे हो? उसने बोला, सुबह से शाम तक धूप में मैं पत्थर तोड़ रहा हूं, कितने मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन पैसा तो बहुत कम मिलता है। बहुत दुखी था वो व्यक्ति, ठीक है। फिर वो सुनते हुए, फिर वो जो टूरिस्ट है वो आगे गया, दूसरे व्यक्ति से पूछा, भाई आप कर क्या रहे हो? उसने बोला, भाई मैं तो अपनी रोजी रोटी कमा रहा हूं। न्यूट्रल था, रोजी रोटी कमा रहा हूं, ठीक है। फिर तीसरे व्यक्ति के पास गया और उसको पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने बोला, मैं बहुत सुंदर एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। तीनों वही काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक के मन के अंदर जो है वो अलग अलग बातें हैं। पहले व्यक्ति के पास वो दुखी था, तोड़ रहा, इतने मजदूर करना, इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतने कम पैसे मिलते, ये बहुत दुखी था। दूसरा व्यक्ति न्यूट्रल था, ठीक है रोजी रोटी कमा रहा हूं मैं। और तीसरा व्यक्ति, भले वो साधारण काम कर रहा है लेकिन उसके एटीट्यूड क्या है, कर क्या है? वो वास्तविकता है ना, तो वो रियलिटी, वो क्या कर रहा है? वो बहुत सुंदर एक मंदिर का निर्माण कर रहा हूं जिसमें लाखों भक्त आएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे, इतना है ना। भले हम साधारण कर्म करते हैं सुबह से शाम तक, यहां आप देख रहे होंगे इतने सारे सेवाधारी इतने प्यार से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिलता, सभी वॉलेंटियर्स है, चाहे यहाँ परमानेंट रेसिडेंट्स है, चाहे यहाँ सेवा के लिए एक हफ्ता या एक महीने के लिए आए हैं, किसी को भी सैलरी नहीं मिलता, लेकिन वो कितने प्यार से सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो इंटेंशन, उनके जो एटीट्यूड है वो ये है, हम सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। जब होटल में आप खाना खाओ और घर में आप खाना खाओ, उसमें अंतर है, उसमें अंतर है। होटल में भले कितना भी टेस्टी खाना हो, लेकिन कितने दिन खा सकते हो आप होटल का खाना, कितने, भले फाइव स्टार होटल का भी खाना हो, कितने दिन खा सकते हो आप? बस 3 दिन, एक हफ्ता, कई टूर पे गए और महीने भर आपको होटल का खाना खाना पड़ा, आप क्या, किसके लिए तरसते हैं? घर का खाना भी, दही चावल खाओ तो बहुत संतुष्टि है। इतना फैंसी खाना भी नहीं चाहिए, दही चावल भी खा ले घर का, एक प्रकार से संतुष्टि मिलती है। क्यों? क्योंकि जो कुक होटल में कुक कर रहा है वो सैलरी के लिए कुक कर रहा है, जो व्यक्ति घर में कुक कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए कुक कर रहे हैं, राइट? वो इंटेंशन, वो वाइब्रेशन बदल जाता है। तो इसीलिए अपने अंदर ये चेक करने की जरूरत है कि मैं जो कर्म कर रही हूं, चाहे साधारण भी कर्म भी कर रही हूं, तो किस इंटेंशन से मैं कर रही हूं। चाहे पढ़ा भी रहे हैं, रोज रोज पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन क्या सोच है, क्या इंटेंशन है आपके पढ़ाने के पीछे? आप ये क्या अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पढ़ा रहे हैं, या फिर किसके लिए कमा रहे हैं? एक बहुत श्रेष्ठ चिंतन क्या ले सकते हैं आप जब पढ़ाते समय? या फिर हाँ, आज कोई और नौकरी नहीं मिली तो यही सही, तो इसलिए आ गए बस, ऐसे हाँ, भविष्य नागरिक को मैं तैयार कर रही हूं। एक एक श्रेष्ठ चिंतन लेकर के आप पढ़ाते हैं, आप अपना देखना कितना उमंग उत्साह आपके अंदर आएगा। और रोज ये जागृत करना पड़ता है, ये अवेयरनेस लाना पड़ेगा। जब भी आपके उमंग उत्साह कम हो जाएगा ना, रोज रोज पढ़ाने का, रोज रोज ये करना है। तो किसके लिए कर रहे हैं ये आप अवेयरनेस जब लाते हैं, तो आपका उमंग जो है वो बहुत जल्दी बढ़ सकता है। तो इसलिए जो भी कर्म, चलिए साधारण झाड़ू पोछा भी कर रहे हैं, हमारे बाबा जो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा है हमारे, तो वो कहते थे, वो भले वो संस्था के हेड थे, बहुत बड़े थे, बहुत ये थे, लेकिन वो साधारण कर्म भी करते थे। जो उस जमाने में जो खाना पकता था ना, वो जो कौडंग होता है, तो उसको सुखा करके फिर उसको आग में डाल करके वो फिर उससे खाना पकता था, या फिर पानी गर्म किया जाता था। तो वो बाबा बैठ करके वो बनाते थे, वो दीवार, गांव में जाते तो दीवार पर नहीं वो लगा रहता है, क्या कहते हैं उसको, कुपले, हाँ कुपले बनाना। तो कुपले हुपले, ओके हुपले, जो भी हो वो समझ तो गए ना आप, समझ तो गए वो चीज। हाँ, साधारण बाथरूम भी साफ करते थे, राइट? लेकिन जो भी साधारण कर्म करते थे बाबा भी, लेकिन उनकी जो अवेयरनेस होता था कि बाबा की यज्ञ की सेवा मैं कर रहा हूं। अगर दादी, जो भी दादियां होते थे ना वहां, जो सीनियर बाबा, बहनों को हम दादियां कहते हैं, तो वो खाना पका रहे होते थे, तो बाबा जाकर के उनको, बच्ची किसके लिए खाना बना रहे हो? ये अवेयरनेस, भगवान के लिए मैं खाना बना रही हूं, है ना? तो ये स्मृति जब आती है तो उसका टेस्ट, वाइब्रेशन जब बदल जाता है, वो खाने का टेस्ट ही बदल जाता है। यहां के खाने का टेस्ट और आपके घर के खाने का टेस्ट अलग है, अलग है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स को छोड़िए, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा है, राइट? हाँ, क्यों? यहां जो भी खाना बनाते हैं वो हमारे योगी भाई है, जो परमानेंट यहां रहते हैं, 25 साल 30 साल से यहां रह रहे हैं, वो लोग खाना बनाते हैं आपके लिए, हम दूसरों से नहीं बनवाते हैं। क्योंकि हम यहां मानते हैं जैसा अन्न वैसा मन, इसीलिए हम उसको, तो इसीलिए साधारण कर्म को साधारण नहीं समझना। साधारण कर्म करते हुए भी अगर हमारी स्मृति, हमारी जो इंटेंशन हाई है, तो वो साधारण कर्म भी बहुत श्रेष्ठ बन जाता है। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी की बात यहां हमें डालने की जरूरत है। और तीसरे पिलर जो है लर्निंग टू बी, ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? वो आर यू, व्हाट आर यू, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितने आई, सॉरी, कितने आईज है आपके लाइफ में?
आज मला ये आई नहीं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कितने हैं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं ब्रदर हूं, मैं बेटा हूं, बताते जाइए, हाँ मदर हूं, मैं फादर हूं, हाँ डॉटर हूं, हाँ टीचर हूं। कुछ आईज है ना थोड़े बड़े हैं, कुछ आईज छोटे हैं। अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते, दिन भर में जो हम कर्म करते हैं, अलग अलग रोल के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते। कुछ आईज बड़े हैं, जितना बड़ा आई उतनी बड़ी ईगो, राइट? लेकिन सबके सेंटर में एक आई है, वो कौन सा है? इन सभी आईज, बहुत सारे आईज और भी हो सकता है अगर हम अपने आप को देखते हैं, राइट? तो इन सभी जो आई है, इनमें से कोई ना कोई एक आई के साथ अपने आप को बहुत गहराई से आइडेंटिफाई करते हैं, राइट? मैं प्रोफेसर हूं, एचओडी हूं, प्रिंसिपल हूं, डायरेक्टर हूं, वाइस चांसलर जो भी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो भी है, वो आइडेंटिफाई करने के कारण से वो ये इतना ब्लो अप हो जाता है, इतना ब्लो अप हो जाता है, इस ये जब निकल जाता है ना अपने लाइफ से, ये जो आई निकल जाता है अपने लाइफ से, वो कब तब क्या होगा, तब क्या होगा? जिनके साथ हम बहुत गहराई से आइडेंटिफाई कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो पोजीशंस हैं। कभी कभी हम एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप के साथ बहुत गहराई से आइडेंटिफाई करते हैं, मैं हस्बैंड हूं, मैं बेटा हूं, या फिर मैं फादर हूं, या एक अटैचमेंट, एक व्यक्ति के साथ अटैचमेंट होने के कारण से इतना ब्लो अप हो जाता है, वो चीज हमारे से निकल जाने के बाद इतना वॉइड क्रिएट हो जाता है अपने लाइफ में, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि यहां खालीपन है, राइट? ये जो भी आईज है, जो भी मैं और मेरापन है, ये सब क्या है? परमानेंट है, परमानेंट है, टेम्प्ररी, कभी ना कभी ये हमारे से छूटेगा जरूर, राइट? छूटेगा या परमानेंट है आपके साथ सब? परमानेंट रहेगा? ये जीवन की रियलिटी है, ये सब टेम्प्ररी है। एक वाइस चांसलर फॉर्मर वाइस चांसलर बनेंगे, राइट? एक प्रोफेसर फॉर्मर प्रोफेसर बनेंगे, राइट? एक्स डाला जाएगा भविष्य में, राइट? वो वॉइड क्रिएट जरूर होगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, राइट? तो इस या जितना बड़ा आए इतनी बड़ी खाए, राइट? बहुत अच्छा है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो रियल आइडेंटिटी है मेरा आई जो है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। वो जो रियल आई है वो कौन है? हाँ, सोल, जस्ट सोल है, सिर्फ आत्मा है। हाँ, यू आर अ डिवाइन सोल, यू आर अ पीसफुल सोल, यू आर अ पावरफुल सोल, यू आर ब्लिसफुल सोल, पावरफुल सोल, हैप्पी सोल, चीयरफुल सोल। इतना सारा कुछ सुन रहे हैं, फटाफट आना चाहिए। प्योर सोल, ग्रेट सोल, नॉलेजेबल सोल, वाइज सोल, डिवाइन सोल, पावरफुल सोल, हो गया वो, हेल्दी सोल, लवफुल सोल, काइंड सोल, कंपैशनेट सोल, लंबा लिस्ट है, राइट? तो वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है. केवल आइडेंटिफाई करना नहीं, लेकिन अनुभव करना जरूरी है. नॉलेज को विजडम में परिवर्तन करना है ना. यहां जो भी मिल रहा है वो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको गहराई से समझा तो अंडर ये नॉलेज बन जाएगा. लेकिन नॉलेज नॉलेज ना रह जाए, वो विजडम बने, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. बार 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 ये अभ्यास करना पड़ेगा. मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, ज्ञानी आत्मा हूं. तो ये बार बार अनुभव जब हम करते जाएंगे, वो जो नॉलेज है वो विजडम में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा. जब और जब हम कहते हैं ना, ये सब चीजें छोड़ो, ये दूसरी आईज जो है ना, जो हम जकड़े जकड़ करके बैठे हुए, पकड़ करके बैठे हुए हैं, तो उसको जब हम कहते हैं ना, इसको छोड़ो, डर लगता है, डर लगता है, कभी ये व्यक्ति मेरे से दूर ना हो जाए, ये चीजें मेरे से छूट ना जाए, डर तो लगता है, क्योंकि हम पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसको हम आधार कर बना करके बैठे हुए हैं. लंगड़ा व्यक्ति बैसाखी के बिना कैसे चलेगा? तो हम उसको आधार बना करके बैठे हैं, हमको डर लगता है ये सभी जो आई है कहीं कभी हमारे से छूट न जाए. डर के कारण से टेंशन है, इनसिक्योर फीलिंग है, इनसिक्योर फीलिंग के कारण से बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां. वो जड़ है इनसिक्योरिटी, और इनसिक्योरिटी का जड़ है मैं और मेरापन. जब हम कहते हैं ना इसको छोड़ो, डर लगने लगता है. हम कहते हैं छोड़ो नहीं, लेकिन अपने कॉन्शियसनेस को चेंज करो. बस एज अ पेरेंट आप अपने बच्चों को की तो देखभाल करनी पड़ेगी, एज अ प्रोफेसर आपको पढ़ाना पड़ेगा, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छी रीति निभाना पड़ेगा, केवल ऊपर ऊपर से नहीं, अच्छी रीति निभाना पड़ेगा. लेकिन फिर क्या करना है उसके लिए? बहन जी आप तो कहते हैं अटैचमेंट नहीं रखो, अटैचमेंट के बिना हम बच्चों की देखभाल कैसे करेंगे? हो सकता है अटैचमेंट के बिना बच्चों की देखभाल हो सकता है? हो सकता है? हाँ, उसकी जगह पे क्या रखना पड़ेगा? लविंग एंड केयरिंग रखना पड़ेगा. लविंग एंड केयरिंग और अटैचमेंट के बीच में क्या अंतर है? हाँ, हर व्यक्ति अलग अलग रोल्स निभाते हैं. जैसे फादर है, राइट है, प्रोफेसर है, ब्रदर है, और क्या रोल्स फटाफट बताइए, हस्बैंड है, और सन है, फ्रेंड है. अभी भाई का, भाई की बात कर रहे हैं ना? ओके, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी है. ये इतने सारे सोसाइटी के प्रति भी होता है ना, कभी रिलेशन वो अलग अलग. ओके, ये सब अलग अलग रिलेशन हम बना रहे हैं, और है प्रैक्टिकली है, राइट? लेकिन हम ये कहते जब फादर का रोल निभा रहे हैं और फिर हस्बैंड के रोल में चले जाते हैं, फिर सन इन लॉ में आते हैं, फिर प्रोफेसर में आते हैं, फिर फ्रेंड में जाते हैं, फिर सन में जाता है, दिन भर में कैसे चल रहा है हमारा? हाउ डज इट लुक? बहुत सुंदर ना, बहुत सुंदर ना. एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे, यहां का टेंशन यहां ले जा रहा है, यहां का टेंशन यहां आ रहा है, वहां का टेंशन वहां आ रहा है, सारा खिचड़ी पका हुआ है. राइट राइट. तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? हाँ, डिटैच होना पड़ेगा. डिटैच होंगे तो फिर कैसे नहीं करेंगे, भूल जाएंगे. इसको काट देते हैं. कैसे काटेंगे? इधर कैंची लेकर के. हाँ, इजी नहीं है भाई. इतना इजी होता तो लाइफ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. ये सभी आपका क्या है? आप एक प्रोफेसर है, आप फादर है, हस्बैंड है, क्या है? दिस इज योर रोल, राइट? दिस अंडरस्टैंडिंग हैज टू बी वेरी क्लियर. ये जो भी चीज है ये आप नहीं है, आपका रोल है, राइट? आप कौन है? आप सोल हो, ये आपका रोल है. ये याद रखना, आप सोल है और ये आपका रोल है ना? तो जब ये कॉन्शियसनेस है तो होगा क्या, ये नेटवर्क है ना, ये सब साफ हो जाता है. ये सब साफ होकर के आप फादर का रोल निभा रहे हैं. आप मैं आत्मा हूं, फादर का रोल निभा रहा हूं. और फिर मैं आत्मा हूं, प्रोफेसर का रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं, ब्रदर इन लॉ का रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं, हस्बैंड का रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं, सन का रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं, फ्रेंड का रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं, ये फलाना रोल निभा रहा हूं. मैं आत्मा हूं लेकिन ये रोल एक ऐसा है. अभी क्लियर है? तो ये क्लटर फ्री है. बार बार जब हम ये स्मृति में जाते हैं तो फिर ये सारे रिलेशनशिप्स भी ठीक हो जाता है, सुंदर हो जाता है और मजबूत होना शुरू हो जाता है. हम समाज में रह रहे हैं तो लोगों से तो हम संबंध को काट नहीं सकते. तोड़ तो निभाना ही पड़ेगा उन सभी के साथ, और अच्छा निभाना पड़ेगा. संबंध बंधन जब बन जाता है ना तब दुख है. संबंध हमेशा सुखदाई है, लेकिन संबंध जब बंधन बन जाता है तब वो दुखी है. तो इसीलिए संबंध को बहुत खूबसूरत बना के रखने के लिए ये कॉन्शियसनेस ऑफ हु आई एम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए जो दो पिलर्स है, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर, ये जो दो पिलर्स है, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टूगेदर, ये बहुत गहराई से कनेक्टेड है. अगर मैं अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई करती हूं तो फिर मैं दूसरों को भी रॉन्गली आइडेंटिफाई करती हूं. अपने बच्चों को क्या बोले, क्या समझे आप? मेरा बच्चा, वो तो है ही आपके बच्चे, राइट? लेकिन उनको देख करके क्या सोचना है? वो भी एक आत्मा है लेकिन इस जन्म में मेरा बच्चा है. संबंध है, संबंध को आप नकार नहीं सकते. संबंध है, वो प्रैक्टिकल है, राइट? लेकिन कॉन्शियसनेस क्या चेंज करना है, क्योंकि उस आत्मा की भी अपनी जर्नी रही है. पिछले जन्म में कहां थे पता नहीं, उस आत्मा की भी अपनी जर्नी है, मुझ आत्मा की भी अपनी जर्नी है. मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है, लेकिन इस जन्म में ये पर्टिकुलर संबंध है. जब ये कॉन्शियसनेस से ये अंडरस्टैंडिंग है तो फिर जो संबंध आप देखेंगे बहुत सुधरता जाएगा, बहुत ही हार्मोनियस होना शुरू हो जाएगा. वो प्यार वहां, जो बॉन्ड, वो जो
ब्लॉकेजेस था, अभी वो ब्लॉकेजेस रिमूव होकर के वो एनर्जी फ्लो जो है वो कांस्टेंट होने के कारण से वो जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही हार्मोनियस हो सकता है, राइट? तो इसलिए चारों ही पिलर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको समझना भी बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए चलिए अब वो जो अंडरस्टैंडिंग हमने अभी हमने पाया कुछ समय के लिए वो अनुभव करें, क्योंकि 6 बजे हमें ये सेशन पूरा करना है, वैलिडिटी सेशन शुरू करना है। हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, राइट? तो 10 मिनट्स में अभी ये अनुभव करें, मैं कौन हूं, क्या हूं, हमारे गुण क्या है, और दूसरे आत्माओं के लिए भी वो वाइब्रेशंस हम कैसे फैलाएं, ठीक है? क्योंकि कल सुबह आपने आत्मा का लेसन सुना, आज सुबह आपने परमात्मा का लेसन सुना, तो कल फिर आप आधार जो मेडिटेशन करने के तरीके हैं वो आप सुनेंगे, लेकिन अभी हम 10 मिनट स्थिर होकर के बैठेंगे और अनुभव करने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा कौन हूं, एनर्जी को फील करें। और मेडिटेशन करने के बहुत सिंपल टेक्निक है, आंखों को खोलना है, हाफ क्लोज्ड रख सकते हैं, योगियों का चित्र आप देखते हैं हाफ क्लोज्ड रहता है, और कोई भी एक पॉइंट पर अपना अपने आंखों को केंद्रित करें, लेकिन फोकस मन का जो फोकस है पूरा भ्रुकुटी के बीच में रहे। मेडिटेशन करते समय हम 3 शक्तियों को यूज करते हैं। एक है मन की शक्ति, जिसके द्वारा हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं। दूसरी शक्ति है बुद्धि की शक्ति, जो तीसरी आंख कहा जाता है, उसके द्वारा हम विजुलाइज करते हैं, चित्रीकरण करते हैं। जितना क्लियर विजुलाइजेशन उतना डीप रियलाइजेशन होता है। और तीसरी शक्ति है फीलिंग, आप उस गुण को गहराई से फील करें। जैसे अगर आप कहे आपको कहे कि नीम अपने आप को विजुलाइज करें नींबू खाते हुए, तो मुंह में पानी आया वो फील, तो विजुलाइजेशन से आप फील कर सकते हैं। तो थॉट्स, विजुलाइजेशन एंड फीलिंग, ये तीनों साथ साथ जब चलता है तो मेडिटेशन हम फोकस कर सकते हैं, एकाग्र कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं। अपने कमर को सीधा रखें और जैसे मैं बोलती जाऊंगी वैसे आप सोचते जाइए, विजुलाइज करते जाइए और फील करते जाइए। आसपास के वातावरण से, आवाजों से अपने मन और बुद्धि को डिटैच करें। और भ्रुकुटी के बीच फोकस करें। भ्रुकुटी के बीच मन के स्क्रीन पर अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक चमकता हुआ अजब सितारा, मैं अपने आप को बहुत क्लियरली देख पा रहे हो बुद्धि के आंख से, एक चमकता हुआ अजब सितारा, अ ब्यूटिफुल स्पार्कलिंग स्टार। उसको फील करें, उस एनर्जी को फील करें। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में बैठकर अपने प्रकंपनों को चारों तरफ फैला रही हूं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं। मुझ आत्मा के प्रकंपन भ्रुकुट के मध्य से पूरे शरीर में फैल रहा है और मैं महसूस कर रही हूं मेरा शरीर बहुत हल्का होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, एनर्जाइज होता जा रहा है। अपने शरीर को एक लाइट के शरीर में देखती हूं जो बहुत ही शुद्ध है, पवित्र है, प्रबुद्ध है। सारे ब्लॉकेजेस, सारे दाग निकले हुए हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूं, साथ साथ मैं आत्मा मन और बुद्धि के द्वारा परमात्मा को विजुलाइज करते हूं मेरे सिर के ऊपर। वो भी एक चमकता हुआ सितारा, लेकिन गुणों में, शक्तियों में वो भंडार है, अथाह है, अनलिमिटेड है। उस परमात्मा के मैं अति प्रिय संतान हूं। परमात्मा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। उसको मैं क्लियरली देख पा रही हूं बुद्धि के आंख से कि परमात्मा से पवित्रता के प्रकंपन मुझ आत्मा तक पहुंच रही है और मैं आत्मा उन किरणों को, उन प्रकंपनों को अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं, भरपूर हो रही हूं। अपने आप को भरपूर करते हुए उन प्रकंपनों को मैं संसार में फैला रही हूं। निरंतर मैं आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई हूं, परमात्मा से प्रकंपन मैं ले रही हूं, शक्तियों के किरणों को मैं ले रही हूं और संसार में फैला रही हूं। जैसे मैं आत्मा पवित्र और शक्तिशाली हूं, पावरफुल हूं, ऐसे सभी आत्माएं शुद्ध और शक्तिशाली है। जैसे मैं आत्मा हूं, वो भी एक चमकते हुए बहुत सुंदर सितारे हैं। उनके अंदर भी सर्वगुण है। इसी कॉन्शियसनेस में मैं कर्म करती हूं। हर आत्मा अच्छी है, शुद्ध है, शक्तिशाली है। ओम शांति।